पिछले पाठ में हम लोग व्याप्ति की चर्चा कर रहे थे, तो व्याप्ति के लक्षण में केशव मिश्र जी ने बताया है कि यत्र धूमः तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, माने साहचर्य नियम का नाम है व्याप्ति। अब ये साहचर्य नियम क्या होता है, साहचर्य समझिए, सहचर, सहचर का जो भाव होता है, सहचर का जो धर्म होता है, उसी को कहते हैं साहचर्य। सहचर कौन होता है, तो एक साथ रहने वाला जो है उसे हम सहचर कहते हैं, और सहचर में रहने वाला जो नियम है, नियम का मतलब निश्चित रूप से जो होता हो उसे हम नियम कहते हैं। तो साहचर्य नियम ही है व्याप्ति। साहचर्य नियम माने सहचर में होने वाला नियम, तो सहचर जो होंगे ना, अकेले तो होंगे नहीं, सहचर कम से कम दो होंगे। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण इन्होंने दिया साहचर्य नियम का, यत्र धूमः तत्र अग्निः, यहाँ पर जो है ना सहचर कौन है, माने दो सहचर कौन है, एक तो धूम हो गया, दूसरा अग्नि हो गया। और धूम और अग्नि ये दोनों जो सहचर हैं, इसमें कौन सा नियम रहता है, साहचर्य नियम रहता है, माने निश्चित रूप से ये धूम जहाँ होगा वहाँ पर अग्नि का साहचर्य होगा ही, वहाँ पर अग्नि निश्चित रूप से रहेगा ही। तो धूम और अग्नि जो है यह हो गया सहचर, और साहचर्य नियम क्या हुआ, तो यत्र धूमा तत्र अग्नि, माने जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये हो गया साहचर्य नियम। नियम जो होता है ना, उस वह ऐसा कहीं नहीं होता कि उसका अभाव हो। तो आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर कि धुआं हो मगर आग न हो, इसीलिए यह जो है ना साहचर्य नियम हुआ, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। और इसी तरह से जहाँ जहाँ जिन दो सहचरों में साहचर्य नियम होता है, साहचर्य नियम माने निश्चित रूप से एक साथ होने का नियम, तो इस तरह का जहाँ भी साहचर्य नियम होगा उस साहचर्य नियम को ही हम व्याप्ति कहते हैं। तो अगर एक सब इस तरह से अगर हम व्याप्ति की का विवेचन करें, तो पूछेगा कि व्याप्ति क्या है, तो कहेंगे कि नियमो व्याप्ति ही, नियम का नाम है व्याप्ति। फिर पूछेगा किस तरह के नियम का नाम व्याप्ति है, तो साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, साहचर्य के नियम को हम व्याप्ति कहते हैं। ताकि उदाहरण क्या है, तो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, इस तरह से धूम और अग्नि का जो साहचर्य नियम है, एक साथ रहने का जो नियम है या एक साथ रहना जो है, उसी का नाम है व्याप्ति। ठीक है, आगे लिखते हैं तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तौ, कि तस्याम व्याप्तौ गृहीतायाम एव, माने उस व्याप्ति का, वह व्याप्ति जब गृहीत हो जाती है, मैंने बताया था ना ग्रह धातु का अर्थ ज्ञान करना है, तो गृहीत माने ज्ञात, तो तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तो, वह व्याप्ति जब ज्ञात हो जाती है उसके बाद धूमो अग्निम गमयति, उस व्याप्ति के ज्ञात होने के बाद माने व्याप्ति ज्ञान होने के बाद धूमः अग्निम गमयति, धूम जो है वह अग्नि का, गमयति माने बोधयति, धूम जो है अग्नि का बोध करा देता है। ठीक है, तो अतो व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वात् धूमः अग्नेः लिंगम। तो क्या हुआ यहाँ पर, आप गौर करिए कि पहले जो है ना व्याप्ति का ज्ञान होता है, उसके बाद ही जो है ना धूम अग्नि का ज्ञान कराता है। तो धूम और अग्नि का व्याप्ति ज्ञान पहले होना है, और जब पहले धूम और अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद धूम जो है अग्नि का अनुमान करा देगा, अग्नि का बोध करा देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब पहले व्याप्ति ज्ञान चाहिए, फिर धूम अग्नि का ज्ञान कराएगा। तो इस तरह से धूम को अग्नि का ज्ञान कराने के लिए किससे बल मिला है, किससे ताकत मिली है, व्याप्ति ज्ञान से ताकत मिली है। क्योंकि अगर व्याप्ति ज्ञान नहीं रहेगा ना, तो वह बेचारा धूम जो है बेचारा हो जाएगा, वह अग्नि का अनुमान, अग्नि का अनुमान नहीं करा पाएगा, अग्नि की अनुमिति नहीं करा पाएगा। इसलिए कहा कि व्याप्ति बले न अर्थगमकम लिंगम। तो यहाँ पर इन्होंने उदाहरण के द्वारा आपको बताया कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। इस तरह से साहचर्य नियम जो है वह व्याप्ति है, और उस व्याप्ति वह व्याप्ति जब गृहित होती है, ज्ञात हो जाती है, उसके बाद ही जो है धूमा अग्निम गम्यति, धूम अग्नि का ज्ञान कराता है। अतः व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वात् धूमः अग्नेः लिंगम्। अतः माने इसलिए व्याप्ति बलेन माने व्याप्ति की ताकत से, व्याप्ति ज्ञान के बल से अग्नि अनुमापकत्वात् धूम जो है वह अग्नि का अनुमापक है, माने अग्नि की अनुमिति कराता है। अतः धूमः लिंगम् अग्नेः, इसलिए धूम जो है अग्नि का लिंग कहलाता है। अब लिंग क्या होता है इसका तो बता दिया कि लिंग क्या होता है। अब परामर्श जो पूछा था ना कि तस्य कश्च तस्य परामर्श, मान लिंग का परामर्श ये क्या होता है, उसका उत्तर दे रहे हैं तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श। तस्य माने लिंगस्य, तो लिंग क्या है यहाँ पर इस प्रसंग में, अग्नि के प्रसंग में धूम है, तो धूमस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श, धूम ज्ञान का जो तृतीय ज्ञान है वह परामर्श कहलाता है। अब आपको लगेगा कि धूम ज्ञान का तृतीय ज्ञान क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे अभी परामर्श का समझिए कि तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श, तस्य माने लिंगस्य, तो तस्य को हटा करके लिंगस्य जोड़ दीजिए, कहिए कि लिंगस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श, लिंग का जो तृतीय ज्ञान होता है वह परामर्श कहलाता है। अगर परीक्षा में पूछे दो नंबर में कह परामर्श, तो कहना है लिंगस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श। अब जो है ना ये तृतीय ज्ञान परामर्श होता है, इसका मतलब है कि लिंग का तीन ज्ञान होता है, तो प्रथम ज्ञान भी होता है, द्वितीय ज्ञान भी होता है, तब तृतीय ज्ञान होगा ना। तो यहाँ पर लिंग है धूम, तो उसको देखिए, ऐसा है कि आप रसोई घर में जाते हैं, रसोई घर को ना संस्कृत में महानस कहा जाता है, तो महानस मतलब रसोई घर। तो अब मैं रसोई घर को नहीं कह करके महानस का ही मैं प्रयोग करूँगा, आप लोग समझ जाइएगा महानस माने रसोई घर। तो कोई व्यक्ति महानस में जाता है और वहाँ धुआं उठते हुए देखता है, तो उसको महानस में धूम ज्ञान जो होता है ना वह प्रथम धूम ज्ञान है। पहली बार धुआं को जो है ना व्यक्ति कहाँ देखता है, महानस में देखता है, और महानस में धुएं को देख करके जो धूम ज्ञान हुआ वह हो गया लिंग का प्रथम ज्ञान, माने धूम का प्रथम ज्ञान। अब द्वितीय ज्ञान कब होगा, ये अनुमान के परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा हो रही है, और अनुमिति कहाँ होनी है, पर्वत पर होनी है अनुमिति, किसकी, अग्नि की, ठीक है। तो पहले जो है महानस में उसको प्रथम धूम ज्ञान हुआ, फिर दूसरा ज्ञान होगा उसको पर्वत पर, वह जब महानस में धूम ज्ञान करके निकलेगा बाहर ना, फिर वहाँ जब पर्वत दिखाई देगा और उस पर्वत पर धुआं उठता हुआ दिखाई देगा, तो उस धुएं को देख करके वहाँ भी धूम ज्ञान होगा। तो दोबारा ये धूम ज्ञान हुआ पर्वत पर, तो यह द्वितीय धूम ज्ञान हो गया या द्वितीय लिंग ज्ञान हो गया। अब तृतीय धूम ज्ञान भी होता है, और वह जो तृतीय धूम ज्ञान है ना वही परामर्श कहलाता है। वह तृतीय ज्ञान क्या है, कैसा होता है, प्रथम ज्ञान तो हो गया महानस में, द्वितीय ज्ञान हो गया पर्वत में, और तृतीय जो धूम ज्ञान हो गया वह तृतीय ज्ञान क्या होता है, तो ये स्वयं आगे बता रहे हैं, शायद नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। करें कि तथा ही प्रथमम तावन महानसादो भूयो भूय धूमम पश्यम बहनिम पश्यते। कहा कि प्रथमम माने सबसे पहले महानसादो, महानस आदि में माने रसोई घर में अथवा जहाँ पशुशाला गौशाला होती है ना, वहाँ भी जो है ना हम खर पतवार को जमा करके आग लगाते हैं ना, शाम के समय में धुआं करते हैं ताकि मच्छर सब वहाँ से भाग जाए, तो इसलिए वहाँ पर भी जो है ना धूम का ज्ञान हो सकता है, और भी कई जगह हो सकती है जहाँ पर कि धूम का ज्ञान हो, इसलिए महानस आदि कहा। तो प्रथमम तावन महानसादो माने सबसे पहले महानस आदि में जो है भूयो भूयो माने बार बारम्बार धूमम पश्यन बहनिम पश्यति, बारंबार जो है व्यक्ति धूमम पश्यम बहनिम पश्यति, धूम को देखते हुए और वहाँ पर बहनी को भी देखता है, बहनी मतलब अग्नि, अग्नि को भी देखता है। तेनो भूयो दर्शने न, और इस तरह से बार बार जब देखता है कि धुआं है और वहाँ पर आग भी है, धुआं है और वहाँ पर आग भी है, इस तरह से जब भूयो दर्शन होता है, बारंबार दर्शन होता है, तो फिर धूम अग्नियोः स्वाभाविकम संबंधम अवधारयति, फिर वह व्यक्ति जो है ना अपने मन में अवधारयति माने निश्चिन्नोति, निश्चय कर लेता है, तो निर्धारयति निर्धारित कर लेता है, तो अपने मन में धूम और अग्नि के बीच में एक स्वाभाविक संबंध का अवधारण करता है कि धूम और अग्नि के बीच में एक जो है ना नेचुरल रिलेशन होता है, स्वाभाविक संबंध होता है, इस तरह का अवधारण व्यक्ति करता है। उसका स्वरूप क्या होगा उस संबंध के अवधारण का, तो यत्र धूम तत्र अग्नि इति, कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, इस तरह से व्यक्ति जो है ना अपने मन में धूम और अग्नि के बीच स्वाभाविक संबंध का अवधारण करता है माने निश्चय करता है। मुझे लगता है कि ये जो तृतीय ज्ञान है ना परामर्श का, इसको शायद बाद में बताएंगे, यहाँ इन्होंने नहीं बताया तो मैं बता दूं फिर और याद भी दिला दूं। प्रथम ज्ञान क्या हुआ महानस आदि में जो धूम ज्ञान होता हुआ प्रथम ज्ञान हुआ, द्वितीय धूम ज्ञान क्या होगा पर्वत पर जो है ना जब देखेगा कि धुआं उठ रहा है तो पर्वत में धूम का जो ज्ञान होगा वह हो गया द्वितीय धूम ज्ञान, और तृतीय धूम ज्ञान क्या होगा तो बहनी व्याप्यो धूम, ये जो है ना इस तरह से आप बल्कि लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, बहनी बहनी में वह लिखना यार अल्लाह वहनी व्याप्यो धूम, वहनी व्याप्यो धूम, वहनी व्याप्यो धूम, मैं समझता हूँ कि लिख लिए होंगे ठीक है। तो ये वहनी व्याप्यो धूम क्या है कि जहाँ पर व्याप्ति होती है ना माने जहाँ पर साहचर्य नियम होता है वहाँ पर एक व्यापक होता है और एक व्याप्य होता है, याद रखिएगा जहाँ व्याप्ति रहेगी जहाँ व्याप्ति ज्ञान रहेगा वहाँ पर एक व्यापक रहेगा और एक व्याप्य रहेगा। वो जो साहचर्य नियम है ना वो सहचर जो होंगे माने एक साथ रहने वाले को सहचर कहा जाता है, तो वो जो सहचर होंगे उन सहचर दो सहचरों में एक व्यापक होगा और दूसरा व्याप्य होगा ठीक है यहाँ तक। अब व्यापक कौन होगा और व्याप्य कौन होगा तो इसके लिए आसान सा उपाय बताता हूँ, जो अधिक जगह रहता हो वह व्यापक होता है और जो कम जगह रहता हो अपेक्षाकृत वह जो है व्याप्य होता है। जैसे यहाँ बहनी और धूम की बात हो रही है ना, यहाँ पर जो साहचर्य है किसका साहचर्य है बहनी और धूम का साहचर्य है, तो आपको ये देखना है कि बहनी और धूम में कौन व्यापक है और कौन व्याप्य है, क्योंकि इन दोनों में व्याप्ति है और जहाँ व्याप्ति रहती है वहाँ पर एक व्यापक होगा एक व्याप्य होगा, तो बहनी और धूम में कौन व्यापक है कौन व्याप्य है इस तरह का जो है ना संदेह होगा। इसके निराकरण करने के लिए गुरुजी ने ये बताया कि जो ज्यादा जगह हो वह व्यापक है और अपेक्षाकृत जो कम जगह रहता हो वह व्याप्य है। तो अब देखिए कि बहनी जो है ना ज्यादा जगह रहती है, मैं एक जगह का नाम बताता हूँ जहाँ बहनी रहती है धुआं नहीं रहता है, कहाँ पर, अब जैसे किसी लोहे को अग्नि में तपा दीजिए जब वह लाल हो जाता है तो उस अग्नि वह जो लाल अग्नि तप्त लोहा है उस लोहे में अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं है ना, तो आपने देखा कि अग्नि जो है महानस में भी रहती है गौशाला में भी रहती है पर्वत में भी रहती है और उस तप्तायह पिंड में भी रहती है, तप्त अयह पिंड, तप्त माने जो बहुत गर्म किया गया हो उसे तप्त कहते हैं, अयह पिंड, अयह माने लोहा पिंड माने उसका टुकड़ा, तो तप्तायह पिंड जो है माने गर्म जो लोहा है उसमें बहनी है मगर धूम नहीं है। तो आपने देखा कि ज्यादा जगह पर बहनी का रहना हुआ इसलिए बहनी हो गया व्यापक, और धूम फिर व्यापी हो जाएगा, क्योंकि धूम महानस में तो है, गौशाला में है, पर्वत में है, लेकिन उस तप्ताय पिंड में नहीं है, उस गर्म लोहे में नहीं है, तो ये कम जगह रहा ना धूम, तो यह हो गया व्याप्य, और बहनी जो है ज्यादा जगह रहता है, इसलिए वो हो गया व्यापक। तो इस तरह से जहाँ व्याप्ति रहती है वहाँ पर जो सहचर होते हैं ना, एक व्यापक होता है और एक व्याप्य होता है। अब देखिए कि प्रथम ज्ञान जो हुआ था धूम ज्ञान कहाँ पर, महानस में, वह ज्ञान कैसा होना चाहिए आपको, तो बहनी व्याप्य धूम ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए प्रथम ज्ञान में? बहनी व्याप्य धूम ज्ञान, माने बहनी व्यापक है और धूम जो है उस बहनी का व्याप्य है, इस तरह का जो ज्ञान है इसी को कहते हैं प्रथम धूम ज्ञान। ठीक है, अब द्वितीय धूम ज्ञान जो मैंने कहा था कि पर्वत पर होता है, वहां पर भी जो धूम ज्ञान होगा वो इसी रूप में होगा, बहनी व्याप्य धूम ज्ञान, माने बहनी व्यापक है और उसका व्याप्य धूम है, उसका ज्ञान जो है वही होगा बहनी व्याप्य धूम ज्ञान। तो बहनी व्याप्य धूम ज्ञान महानस में होता है, वह हो गया प्रथम ज्ञान। बहनी व्याप्य धूम ज्ञान पर्वत पर होता है, वह हो गया द्वितीय ज्ञान। अब तृतीय ज्ञान होता है, और उस तृतीय ज्ञान का स्वरूप लिख लीजिए कॉपी पर, बहनी व्याप्य धूमवान पर्वत। लिखिए, वहनी व्याप्य धूमवान पर्वत, वहनी व्याप्य धूमवान पर्वत। खाली जो है ना, पहले था बहनी व्याप्यो धूम, इसमें है बहनी व्याप्य धूमवान पर्वत, लिख लिया होगा। अब इसको देखिए, धूमवान मतलब क्या, धूम से युक्त। ठीक है, तो बहनी व्याप्य धूमवान पर्वत, बहनी का जो व्याप्य धूम है उस धूम से युक्त पर्वत है, यह जो ज्ञान है ना, इसी का को कहते हैं तृतीय ज्ञान। बहनी व्याप्य धूमवान पर्वत, बहनी के व्याप्य धूम से युक्त यह पर्वत है, इस तरह का जो ज्ञान है इसी को कहते हैं लिंग का तृतीय ज्ञान। ठीक है, तो आपने देख लिया महानस में जो बहनी व्याप्य धूम का ज्ञान है वह हो गया प्रथम ज्ञान, पर्वत पर जो बहनी व्याप्य धूम का ज्ञान हुआ वह हो गया द्वितीय ज्ञान, और उसके बाद जो बहनी व्याप्य धूमवान पर्वत का ज्ञान होता है, माने बहनी व्याप्य धूम से युक्त यह पर्वत है, इस तरह का जो ज्ञान होता है वह हो गया तृतीय ज्ञान, और यही जो तृतीय ज्ञान है इसी का नाम है परामर्श, इसी को हम परामर्श ज्ञान भी कहते हैं। अब आगे की पंक्ति को संक्षेप में बताऊं, या एक बार बताया भी था कि तथा ये प्रथमम तावन महानस आदो भूयो भूयो धूमम पश्यम बहनीम पश्यति। सबसे पहले महानस आदि में बारंबार धूम को देखते हुए बहनी को व्यक्ति देखता है, तेन भूयो दर्शनेना, उस बारंबार दर्शन से धूम और अग्नि का जो स्वाभाविक संबंध है उस संबंध का अवधारण करता है, माने मन में निश्चय करता है कि यत्र धूमा तत्र अग्नि, माने जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, तो यत्र धूमा तत्र अग्नि, ये जो ज्ञान है ना इसी को कहते हैं वन्य व्याप्य धूम का ज्ञान। तो वन्य व्याप्य धूम का ज्ञान का स्वरूप अगर कोई पूछे क्या होता है तो यही कहना है, यत्र धूमा तत्र अग्नि इति ज्ञानम, वन्य व्याप्य धूमक ज्ञानम। आज का पाठ यही रखते हैं।